ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिक कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूत्रे श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामे, नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पात्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कार्य। आप सबों का आज के इस सैटरडे स्पेशल सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ देर पहले जो हमने हरिनाम संकीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, इसे युग धर्म कहा गया है। क्या कहा गया? युग धर्म। हर युग का एक धर्म होता है। जिस तरह से हर मौसम का एक फल होता है, उसी तरह से हर युग का एक धर्म होता है। ये मौसम समर्स का चल रहा है, गर्मी का। इस मौसम का फल कौन सा है? आप सब मैंगो खा रहे हो, सारे आम आदमी आम खा रहे हैं। तो ये जो मौसम है, इसमें प्रकृति हमें एक ऐसा फल देती है जो इस मौसम के लिए सूटेबल है। आप देखिए, इस मौसम में जो भी फल आते हैं वो ज्यादातर वाटरी होते हैं, जूसी होते हैं या वाटरी होते हैं, या उनमें जो फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रुक्टोस, जो उसकी लेवल होती है वो ज्यादा होती है, ताकि आप जैसे ही वो खाएं आपको उसी समय एनर्जेटिक फील होने लगे, हाइड्रेटेड फील होने लगे, क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें हमारी बॉडी वाटर बहुत छोड़ती है, स्वेट बहुत होता है, डिहाइड्रेट बहुत हो जाते हैं हम। तो इस वेदर के लिए जो नेचर हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करती है, जो फल हमें मिलते हैं, वो भी वैसे मिलते हैं जो हमें हाइड्रेट करे, जो हमें एनर्जेटिक फील कराए, हमारी शुगर लेवल को बढ़ा दे, एक्टिव करे हमको, अब समझिए इस बात को, जिस तरह से ये प्रकृति मौसम के अनुसार आपको वो देती है जिसकी आपको जरूरत है, उसी तरह से भगवान भी आपको युग के अनुसार वो देता है जिसकी आपके आत्मा को जरूरत है। प्रकृति आपको वो देती है जिसके आपको शरीर को जरूरत है, और भगवान युग के अनुसार वो देता है जिसकी हमारे आत्मा को जरूरत है। इस युग में, जिस युग को कहते हैं कलयुग, कली दावानलम सर्वसाधनम भस्मताम गतः, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आता है कि इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के और सारे साधन भस्म, मतलब सारे साधन जल चुके हैं, नाश हो चुके हैं। इसमें कोई भी साधन इफेक्टिव नहीं है जितना भगवान का नाम इफेक्टिव है। कैसे? फिर आते हैं भागवत पर। श्रीमद् भागवत महापुराण में, उद्धव गीता में उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि जिस तरह से सतयुग में ध्यान एक साधन था, मतलब सतयुग का जो युग धर्म था वो ध्यान था, उस युग में लोगों की आयु भी हजारों वर्ष की हुआ करती थी। ध्यान करते हुए लोग भगवान को प्राप्त किया करते। इस मनुष्य योनि का सदुपयोग किया करते, जन्म मृत्यु से छूटा करते। किस माध्यम से? ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन। और देखिए, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में हर एक की विधि बताई गई है, यहां तक कि भगवद गीता में भी ध्यान की विधि बताई गई, कर्म की विधि बताई गई, और फिर भक्ति की विधि बताई गई। जहां तक ध्यान की बात है, उस ध्यान की विधि की या उस ध्यान की जो प्रक्रिया है, अगर आप उसके विषय समझने की कोशिश करो और उसे इन डेप्थ वैसे प्रक्रिया को करने का प्रयास करो, तो आप समझ जाओगे कि वो हमारे लिए संभव है ही नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं श्रीमद् भगवद गीता से ही। जब भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की विधि बताई, 6th chapter भगवद गीता, बताने वाला कौन है बोलिए? कृष्ण स्वयं भगवान, श्री भगवान उवाच, गीता में आया, ये बोलने वाला कौन है? भगवान स्वयं। वो विधि बता रहा है अर्जुन को ध्यान की, राजयोग, 6th chapter भगवद गीता। लेकिन अर्जुन उस विधि को, उस प्रक्रिया को रिजेक्ट कर देता है। वो युग कलयुग भी नहीं था, बल्कि इससे बेहतर युग था, और वो कौन सा युग था? द्वापर युग। अर्जुन उस ध्यान की विधि को बताने वाला भले ही भगवान है, देखिए बताने वाला भगवान है लेकिन करना तो इंसान को है, करना तो इंसान को, और वो भी कौन से इंसान को, कलयुग के इंसान। अब कलयुग का इंसान बेचारा क्या कर पाएगा, श्री राधे कहिए। आज हमारे शरीर में कोई भी तपस्या सहन करने की शक्ति नहीं बैठी है, एक पोस्चर में बैठना तो भूल जाइए, ध्यान के लिए एक पोस्चर की जरूरत है सबसे पहले। इस ध्यान की विधि में हम कितने घंटे बैठ सकते हैं, मैं दावे से कहता हूं आप 10 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, श्री राधे कहिए। कमर झुक जाएगी, हाथ हिल जाएगा। मान लीजिए किसने प्रैक्टिस करते 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 उसे बढ़ा भी लिया, लेकिन वो घंटों तक बैठ भी गया, लेकिन दूसरी विधि ये कहती है कि इसे सेक्लूडेड प्लेस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब शहर से कहीं दूर सुनसान जगह पर। चलिए कोई ऐसी जगह पर चला गया, लोनावाला चला गया, क्योंकि लोनावाला भी तो सिटी है, एक ही बात है। मान लीजिए हिमालय पर चला गया, चलो अब यहां कहा गया। फिर तीसरी विधि आती है कि आपका जो आसन लगता है बैठने का वो कैसा होना चाहिए, अब वैसा आसन बनाना कहां से मिलेगी, वो हिरन की खाल कहां से मिलेगा। और फिर मान लीजिए ये भी किसी को मिल गया, फिर उसके बाद एक और विधि आती है प्रैक्टिस करने की कि अपने ध्यान को दोनों भ्रकटी के मध्य में स्थिर कीजिए। नाभि से प्राण वायु को उठाइए, ऐसा बाल्टी में था खड़ी सब, अब क्या उठाएंगे हम बताइए, किस तरह से किसी न किसी विधि और प्रक्रिया में हमारी गलती होगी ही होगी। और मान लीजिए इन सब में हमने कोशिश कर भी ली, भूख लगना, प्यास लगना, वॉशरूम जाना, ये सब। अब यहां तो कई लोग कृष्ण की कृपा से जमीन पर बैठे हैं, लेकिन कई लोग ऊपर भी तो बैठे हैं। ये बेचारे जो ऊपर बैठे हैं ऊंट पर, वो अपने पैरों को मोड़ भी नहीं सकते, और जो नीचे भी बैठे हैं, अगर आज थोड़ी सी हम इस सत्संग को लंबा कर दें तो वो भी अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे, उनके भी नीज में दर्द होने लगेगा। तो मुझे बताइए क्या जो व्यक्ति एक पोस्चर में नहीं बैठ पा रहा उसके शरीर के अनुसार उसे भगवान पाने का कोई हक ही नहीं, अगर वो ये विधि ये प्रक्रिया ये सब नहीं कर पा रहा है, उसे हक है ही नहीं, फिर तो वो गया बेचारा। देखिए सतयुग के शरीर अलग थे, उस समय के शरीर ऐसे थोड़ी थे, उस समय के शरीर बड़े तेजस्वी थे, उस समय की लाइफस्टाइल आज के जैसी लग्जरियस थोड़ी थी, उस समय लोग मर्सिडीज में थोड़ी घुमा करते थे, ऑडी में थोड़ी घुमा करते थे, उनके शरीर में इतनी शक्ति और इतनी ऊर्जा हुआ करती उस समय डायबिटीज नहीं हुआ करती, ब्लड प्रेशर नहीं हुआ करता, और ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसे आज कहते हैं वो नहीं हुआ करती, मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं हुआ करते। उस समय लोग बड़े ऊर्जावान थे, वो शरीर अलग था, तो उनके लिए इसीलिए प्रक्रिया भी अलग थी कि तुम ये कर पाओ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो लोग नेवी में होते हैं या आर्मी में होते हैं, उनको एक फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। उनकी हाइट चेक की जाती है, उनकी बॉडी के, उनके शोल्डर के विड्थ, उनकी आई साइट, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी स्टेमिना, वो सब कुछ टेस्ट किया जाता है, और कुछ को सिलेक्ट किया जाता है और कुछ को उस बेसिस पर रिजेक्ट किया जाता है। किसी की आंखों की रोशनी यदि कम है उसे भी रिजेक्ट कर लिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे शरीर बने हुए हैं जिन्हें वैसा बनाया गया है कि वो आर्मी में जाए, और कुछ ऐसे शरीर बने हैं जो वो नहीं कर सकते, उस एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो कलयुग है, ये जो कलयुग है, इस कलयुग में हमारे वैसे शरीर बने ही नहीं है जो ध्यान की विधि को, प्रक्रिया को पूरा कर सके। अच्छा, दूसरी बात, अब ध्यान करने के लिए इतना तो हम सब जानते हैं कि एक प्रकार की मुद्रा, एक प्रकार का आसन चाहिए, एक प्रकार का पोस्चर चाहिए। तो जो बेचारा बेड रेस्ट पर है वो कहां जाए, जो बेचारा वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, वो कहां जाए। इसका मतलब ध्यान यदि किया भी जा सकता है तो वो सिर्फ तब किया जा सकता है जब आपका फिजिकल शरीर फिट हो, कंडीशन है उसमें। समझिए इन सब बातों को। इसीलिए सतयुग में लोगों की आयु जो हुआ करती वो बहुत लंबी हुआ करती, और उनके शरीर वैसे बने थे कि वो हजारों वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर ध्यान की विधि को कर सके। ये सतयुग की प्रक्रिया थी। फिर आया कौन सा युग? त्रेता युग। त्रेता युग में यज्ञ की प्रक्रिया आई। यज्ञ, महाराज दशरथ ने भी भगवान श्री राम को यज्ञ करके पाया था। अब वो यज्ञ की प्रक्रिया जो है वो भी बड़ी कठिन है। सबसे पहले तो यज्ञ करने के लिए एक जेन्युइन ब्राह्मण की आवश्यकता, जो आज के युग में है ही नहीं। आज के युग में सब समान है, एक ही है। ब्राह्मण की डेफिनेशन जो भगवत गीता में कृष्ण देते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च, कि चार प्रकार के वर्ण हैं, जिसमें से एक वर्ण है ब्राह्मण का। चतुर्वर्ण मया सृष्टम, इन वर्णों की रचना मैंने की है, लेकिन गुण कर्म विभागश्च, हर व्यक्ति अपने गुण और कर्म के द्वारा ब्राह्मण बन सकता है, या क्षत्रिय बन सकता है, या वैश्य बन सकता है, बिजनेस क्लास। अब सोचिए, लोग समझते हैं कि एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और पीछे ब्राह्मण की सरनेम लग गई तो हम कौन बन गए? ब्राह्मण बन गए। ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ कि किसी डॉक्टर के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया और उसने कह दिया कि अब मैं डॉक्टर हूं, मैंने डिग्री ली या नहीं ली, मैंने पढ़ाई की या नहीं की, मेरा घर डॉक्टर के जन्म में हुआ और मैं डॉक्टर बन गया। उस क्वालिफिकेशन तक पहुंचने के लिए उसे वो सारी स्टेजेस पार करनी पड़ेंगी एजुकेशन वाइज, जिससे वो डॉक्टर बन सके। सिर्फ एक डॉक्टर के घर में जन्म लेने से कोई डॉक्टर नहीं बनता, एक लॉयर के घर में जन्म लेने से कोई लॉयर नहीं बनता, एक इंजीनियर के घर में जन्म लेने से कोई इंजीनियर नहीं बनता, उसे वो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, गुण और कर्म उसे ब्राह्मण बनाते। अब मुझे बताइए, आज के समय में वैसे ब्राह्मण बचे ही कहां हैं? वैसे मंत्र जानने वाले, एक शादी में तो मैंने देखा कि, क्योंकि आजकल शादी तो जैसे कोई फेरी टेल चल रही है, आसमान से परी उतर रही है और उसका परा उसका इंतजार कर रहा है, फिर एक बॉलीवुड का सॉन्ग बज रहा है और दोनों डांस करते करते विधि मंडप में आ रहे हैं। एक जगह तो लड़के ने लड़की को गोद में उठाना चाहा और कहा मैं गोद में उठा के विधि मंडप ले चलूंगा, और बाद में दोनों ऐसे गिरे कि उन दोनों को किसी को उठाना पड़ा। तो क्या क्या आजकल हो चुका है, और सूर्यास्त बीच पर विधि मंडप लगाया हुआ था। वैसे तो विधि मंडप उस स्थान पर होना चाहिए जो देवालय हो, जहां पवित्र वेदों का पाठ, भगवद गीता का पाठ होता हो, जहां मंत्रों का उच्चारण होता हो, ऐसे स्थान पर विधि मंडप होना चाहिए। यहां तो बॉलीवुड के गाने बज रहे थे, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और फिर आसपास में जो बैठे थे वो सब नॉनवेज खा रहे थे, नॉनवेज खा रहे थे, सामने मंत्र पढ़े जा रहे थे, लोग ड्रिंक भी कर रहे थे। अब मुझे बताइए कौन सा देवता ये आहुति को स्वीकार करेगा? और मजे की बात सुनिए, वो एकादशी का दिन भी था, और ब्राह्मण भी ये बताने वाला नहीं, क्योंकि आप देखिए उस समय वो जो हवन कुंड में डाला जाता है आहुति, वो भी अनाज ही तो होता है, तो देवता तो एकादशी रखते हैं, तो उनको कैसे अनाज अर्पण किया जा सकता? देवताओं को आहुति कैसे? क्योंकि मंत्र में तो गणेश जी की भी मंत्र आता है, सारे देवताओं का मंत्र आता है, उनके नाम की आहुति होती है, तो फिर एकादशी के दिन कौन सा सबका तो व्रत है? इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। इस तरह से आज हवन का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी किसी को यह नहीं पड़ी है कि हवन क्या होता है, यज्ञ क्या होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर शाम के समय, सनसेट के समय ये मंत्र पढ़े जाएंगे तो वो भी तो वेदों के मंत्र का की विधि का उल्लंघन करना हुआ, क्योंकि ये मंत्र तो सूर्य के सामने पढ़े जाते हैं, सनसेट के बाद तो आप वेदों के मंत्र का उच्चारण भी नहीं करते, उसका गलत असर होता। इट हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन, वो तो उल्लंघन है, वो तो अपराध हो गया, क्योंकि वेदों के मंत्र बड़े स्ट्रिक्ट हैं। यज्ञ मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि यज्ञ की विधि लोगों को पता ही नहीं है जो कर रहे हैं कि यज्ञ की विधि क्या होती है, और यज्ञ में तो बड़े दान दिए जाते हैं, महाराज दशरथ ने जब यज्ञ में दान दिया तो कई सैकड़ों गवों का दान दिया, सोने चांदियों का दान दिया, हाथियों का दान दिया। यहां तक कि महाभारत के काल में भी जब अश्वमेध यज्ञ किया गया, राजसु यज्ञ किए गए, तब इसमें बड़े बड़े राजा आए थे और ऐसे ऐसे राजा और ऋषि मुनियों को बड़ा बड़ा दान दिया गया जिसमें सोना हुआ करता था। इतना आजकल गाय के नाम पे दान में क्या दिया जाता है पता है? नकली छोटी सी चांदी की गाय, वो भी पानी चढ़ी हुई। आप सोचिए कि ये तो यज्ञ की विधि को फॉलो करना नहीं हुआ। पहले के समय में ये महाभारत ग्रंथ में आता है कि जब ब्राह्मण बैठकर मंत्रों का उच्चारण करता तो देवी देवता देवलोक से उस यज्ञ में आ जाते थे और उस यज्ञ में वहां उपस्थित हो जाते थे। आज के यज्ञ में देवी देवता तो छोड़ी है, वहां पर असुर भी ना आए, श्री राधे कही। इस प्रकार की यज्ञ की विधि का अपमान किया जा रहा है। आप सोचिए जहां नॉनवेज चल रहा हो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि नॉनवेज और ड्रिंक वहां पर नहीं हो सकती जहां पूजा हो रही है, क्योंकि यज्ञ क्या है? पूजा है। तो यज्ञ भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग आया और द्वापर युग में अब विधि बदल गई। युग के अनुसार जो युग धर्म था वो था वर्शिपिंग का, पूजा करने का। अब पूजा की भी विधि किस तरह से भगवान की विग्रह की सेवा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, उसकी भी एक विधि है जो एक सामान्य व्यक्ति अपने घर में नहीं कर पाएगा। आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, किसी को कॉलेज जाना है, उनको ब्रेकफास्ट बनाकर देना है, फिर घर में ये मेड आई है उसको ध्यान देना है, फिर स्विगी डिलीवरी करने वाला सब्जी लेकर आया है, फिर कोई अमेजोन से पार्सल आया है, तो ऐसे में आप कहां उस पूजा पर फोकस कर पाओगे? कहां वो एक लंबी चौड़ी विधि जो प्रक्रिया होती है पूजा करने की उसे फॉलो कर पाओगे? ये युग धर्म था द्वापर युग का। अब युग आया है कलयुग। इस कलयुग में युग धर्म बताया गया हरिनाम संकीर्तन को। देखिए सतयुग में वो ध्यान करने के लिए उनको वैसा समय मिला, वैसी परिस्थिति मिली, वैसा शरीर मिला। त्रेता युग में उनको वैसा शरीर मिला, वैसा समय मिला, वैसी परिस्थिति मिली, तो उन्होंने उस समय यज्ञ किया। द्वापर युग में पूजा की। अब कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथाय। कि कलयुग में हरि के नाम के अलावा हरि के नाम के अलावा हरि के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, तीन बार कहा गया। फिर श्रीमद् भागवत का ये श्लोक कली दोषे, आप भी बोलिए, निधे राजन अस्ति ये को महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। कलयुग में सैकड़ों दोष, कली दोषे निधे राजन। ये कलयुग क्योंकि अब दोषों से भर चुका है, इसमें न ध्यान की विधि का पालन किया जा सकता है, न यज्ञ की विधि का, न पूजा की विधि का पालन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अब दोषों से भर चुका है। इसमें चलते फिरते उठते बैठते इंसान से दोष हो रहे हैं। आपको कभी कभी पता भी नहीं चलता, आपकी आंखें वो देख लेती है जो उसे नहीं देखना चाहिए या वो नहीं देखना चाहती, हो गया दोष आंखों से। आपके कान वो कुछ सुन लेते हैं जो वो नहीं सुनना चाहते या जो उसे नहीं सुनना चाहिए, हो गया दोष। आपका मुंह वो कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए, हो गया दोष। आपका मन वो सोच लेता है जो उसे नहीं सोचना चाहिए, हो गया दोष। मन कर्म और वचन तीनों से हम दोष कर रहे हैं। कलयुग ऐसा समय, इस युग का ऐसा प्रभाव है, यहां आप जहां देखो तो वहां पर नेगेटिविटी है, एक प्रकार की नकारात्मक। इस कलयुग को चलाने वाला जो प्रधान है वो काम बताया गया, लस्ट। कलयुग को जो चलाने वाला प्रधान है वो है काम। त्रिविदम नरकस्वेदम द्वारम कामः क्रोध लोभः। कृष्ण गीता में कहते हैं कि नरक जाने के तीन द्वार हैं। देर आर थ्री गेट्स टू हेल, काम क्रोध और लोभ, ये तीन है। जब काम मतलब डिजायर पूरी नहीं होती, आपकी मान लीजिए कोई भी इच्छा है, तीव्र इच्छा, अगर वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपको क्या आएगा? बोलिए, क्रोध आएगा, है ना? आज आपको क्या खाने का मन है बताइए। मान लीजिए आपको खाने का मन है आज बिरयानी, और आप कहकर आए हो कि आज मुझे बिरयानी खानी है, तो मन में एक बात रहती है कि आज घर जाकर हम क्या खाएंगे? बिरयानी खाएंगे। लेकिन घर में बने हैं दाल चावल। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या है? ये क्या बनाया है? मैंने कहा था आज मुझे बिरयानी खानी है और तुमने दाल चावल। वैसे दाल चावल वो खाना है जो मैं 365 डेज खा सकता हूं, इसलिए अच्छा है कभी बिरयानी नहीं बनी तो गुस्सा नहीं आएगा। मतलब डिजायर पूरी नहीं हुई, आप जैसा चाहते हो वैसा न हो तो फिर क्या आया? क्रोध आया। और आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाए तो पता है क्या आता है? लोभ। जैसा चाहते हो वैसा हो जाए तो और इच्छा बढ़ती। बिरयानी तो अच्छी थी लेकिन अब नेक्स्ट वीक वापस बनाना थोड़ी स्पाइसी। अब इच्छा, आपने कभी नोट किया जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपको, मान लीजिए आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है, आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है, अगर आप उस मीठे को खाने के लिए लोभी हो जाओ तो वो क्या करेगा? आपका बहुत नुकसान करेगा।
शुगर बढ़ जाएगी एंड देन वी विल गेट अ लाइफस्टाइल डिजीज कॉल्ड लाइक डायबिटीज। और अगर उस मीठे खाने की इच्छा को पूरा नहीं किया तो क्रोध बढ़ जाएगा एंड वी विल गेट अ लाइफस्टाइल डिजीज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो दोनों तरीके से, इसीलिए कृष्ण ने कहा त्रिविदम नरकस्विदम द्वारम, कि ये ऐसी तीन चीजें हैं जो इंसान को जीते जी भी नरक में डाल सकता है और मरने के बाद भी नरक में डाल सकता है। क्योंकि जब ये सब होने लगता है तो इंसान अपनी बाउंड्रीज को भूल जाता है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने लगता है। और याद रखिएगा, जैसे ही लिमिट्स क्रॉस हुई तो डिस्ट्रक्शन आएगा, डिवास्टेशन आएगा। जब समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ देता है तो बड़े बड़े शहर भी उसमें डूब जाते हैं। ऐसे ही जब हमारी डिजायर हमारी सीमाओं को लांघ देती है, लिमिट्स को क्रॉस कर देती है, तो फिर डिस्ट्रक्शन आता है। तो आज का इंसान इन प्रकार के दोषों से भरा हुआ है। ऐसे में छोटे से छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति का भला कैसे हो? ऐसे में छोटे से छोटा बच्चा और एक बेड ड्रिवन बेड रेस्ट पर भी अगर कोई पेशेंट है, बूढ़ा 90 वर्ष का 100 वर्ष का व्यक्ति है, उसका भला कैसे हो? हम वृंदावन में गए, 105 वर्ष की किशोरी अम्मा भजन कर रही है, अभी भी भजन कर रही है। और हम देखते हैं कि हमारे परिवार में अभी समर कैंप चल रहा है बाल गोपाल, और वहां छोटे से छोटे बच्चे आते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं बोलिए? भजन कर रहे हैं, कृष्ण नाम ले रहे हैं, उन्हें नाम लेना सिखाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये नाम लेना इस कलयुग का युग धर्म है। इस कलयुग में हर व्यक्ति ये नाम ले सकता है, बच्चे से बच्चा कह सकता है कृष्णा, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति कह सकता है कृष्णा, सबके लिए। इसलिए इस युग की विधि को, इस युग के धर्म को, देखो मोबाइल भी नाम ले सकता, कलयुग का मोबाइल भी हरे कृष्णा। इस युग में हर कोई नाम ले सकता है। मेरे साथ कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपने वो रील्स में देखा होगा, एक छोटा बच्चा आता है फ्लाइट में चढ़ता है, कहता है हरे कृष्णा, बीच में एक पैरट आया था, पैरट वो कहता था हरी बोल राधे राधे, श्रीमन महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से जाया करते जगन्नाथपुरी से वृंदावन, तो उस जंगलों के रास्ते से जब वो संकीर्तन करते जाते तो वहां के जो जंगली जानवर थे, शेर जैसे जानवर, हाथी जैसे जानवर, वो महाप्रभु के साथ कीर्तन में नाचने लगते। ये नाम का ऐसा प्रभाव है। देखिए, जैसे हर बीमारी को काटने की एक दवा होती है, वैसे ही कलयुग की बीमारी को काटने की दवा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। जिस तरह से एक लो इम्यूनिटी वाला व्यक्ति हमेशा एक्सपोज्ड रहता है बैक्टीरियाज और वायरस रहता है या नहीं बोली। अब कोविड में हम सब मास्क क्यों लगाकर घूमते थे? कोविड में सबसे ज्यादा बिजनेस मास्क ने किया और सैनिटाइजर और मल्टीविटामिन्स ने किया दवाइयों में, क्योंकि मल्टीविटामिन्स खाने से क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। जिस तरह से हर व्यक्ति कोविड में मल्टीविटामिन्स खा रहा था ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे और वायरस का अटैक उस पर न हो, ऐसे ही कलयुग में एक वायरस है जो आपको हर तरफ से अटैक कर रहा है। जैसे महाराज परीक्षित को अटैक किया, वो ये किया या नहीं? बेचारे ने किया क्या था महाराज परीक्षित ने? सिर्फ वो मुकुट पहना सोने का जिसमें कलयुग बैठ गया था और गए अपने जंगल के रास्ते से सैर करने। मरा हुआ सांप नजर आया, श्रृंगी ऋषि नजर आए, सांप को उठाया और उनके गले में डाल दिया। ये किसका अटैक था? कलयुग का अटैक था। और फिर बाद में जब कलयुग ने अटैक कर दिया, एकदम आईसीयू में चले गए, तो उनको 7 दिनों तक बोलते ना, ये व्यक्ति सीरियस हो गया। सीरियस जब हो जाते हैं तो खाना पीना बंद हो जाता है। तो महाराज परीक्षित का भी खाना पीना बंद। सीरियस जब हो जाते हैं तो आईसीयू में एक जगह पर लेटे रहना पड़ता है। महाराज परीक्षित भी एक जगह पर बैठ गए, न खा रहे हैं न पी रहे हैं। सीरियस जब हो जाते हैं आईसीयू में तो कंटिन्यूसली अंडर मॉनिटर रहते हैं, पी 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 ये बजता रहता है और डॉक्टर की नजर रहती है। डॉक्टर ज्यादा ध्यान देते हैं ऐसे पेशेंट्स पर, 24/7 वहां पर कोई देखने वाला होता है। ऐसे ही महाराज परीक्षित को भी 24 घंटे देखने वाले सुखदेव गोस्वामी बैठे। और कृष्ण कथा कृष्ण नाम लेते 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 7 दिन बाद उनकी जो ये बीमारी थी, ये जो भव रोग था, उससे महाराज परीक्षित हमेशा के लिए छूट गए। और उसी भागवत के अंत में जो श्लोक आया वही तो अभी हमने पढ़ा, कली दोषे निधे राजन अस्ति ये को। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कली दोषे राजन मतलब हे राजा, आने वाला जो कलयुग है वो पूरी तरह से दोषों से भरा हुआ है और तुम्हारे सर में वही कलयुग घुस चुका था। कली दोषे निधे राजन अस्ति ये को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। कृष्ण नाम संकीर्तन यही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बन गया, यही युग का धर्म बन गया। और भगवत गीता में अब सुनिए 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, यज्ञों में मैं, मतलब यज्ञ भी यही है। जब जो हम करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
इसलिए भगवान के नाम संकीर्तन को कलयुग में महायज्ञ भी बताया गया कि ये महायज्ञ है, कि जब वैष्णव मिलकर, जब वैष्णव जन भक्त जन मिलकर कीर्तन गाते हैं तो वो किसी महायज्ञ से कम नहीं है, वो महायज्ञ है।
और भगवद गीता तो बल्कि यहां तक कहती है कि जब हम कीर्तन करते हैं उस यज्ञ के फल स्वरूप बादल वर्षा देते हैं। जो बारिश आती है गर्मियों के बाद, वो बारिश भी इसके सदके आ रही है कि कुछ वैष्णव कुछ भक्त ऐसा महायज्ञ कलयुग में कर रहे हैं, क्योंकि वो यज्ञ करने वाले तो कोई बचे ही नहीं। इसलिए मेरे साथ कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा एक छोटी सी कथा सुनाओ। एक बार पता है क्या हुआ, कन्हैया है ना, माता जशोदा को बड़ा परेशान करने लगे। सारे जो माखन की मटकियां थी, जरा सा मां जशोदा यहां हुई, कृष्ण ने सारी माखन की मटकियां फोड़ दी और गोकुल के अपने कमरे को माखन का स्विमिंग पूल बना दिया। ऐसे तैर रहे हैं, खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, सखाओं को खिड़की से बुला बुला कर खिला रहे हैं, देखो देखो इतना सारा माखन। अब माँ जशोदा आई तो आज उनको तो बहुत गुस्सा, सोटी उठाई सोटी कि आज कन्हैया तू बहुत पिटेगा आज तू। भाई ठाकुर जी को भी कोई पिटने वाला है, वो भी तो पिटना चाहते हैं। मैं एक आपको बात बताऊं, भगवान अपनी जगह भगवान तो है लेकिन उसकी भी फीलिंग्स है, समझी, उसकी भी फीलिंग्स है। जैसे एक कंपनी का सीईओ, भले ही कंपनी का सीईओ हो लेकिन उसकी भी फीलिंग्स होती है। एक साधु एक संत भले ही बहुत बड़ी पदवी का संत हो लेकिन उसकी भी फीलिंग्स होती है। ऐसे ही मेरा ठाकुर भले ही तीनों लोगों का नाथ है लेकिन उसकी भी फीलिंग्स है। वो कभी रोता भी है, कभी हंसता भी है, कभी खेलता भी है, कभी कूदता भी है, कभी डांट भी खाता है, कभी चमाट भी खाता है। अभी माता जशोदा ने तो कृष्ण को कई बार कृष्ण के गाल गर्म किए होंगे। तो वो कन्हैया ऐसा है क्योंकि उसकी भी फीलिंग, वो भी चाहता है कि मुझे प्यार करो। जैसे आप में इच्छा है कि हमें सब कोई प्यार करेगा, भगवान का तो कोई और परिवार है ही नहीं, हम ही तो उसके परिवार है। उसकी ना माँ है ना उसका पिता है ना कोई है, जो सब है वो हम ही तो उसके जीव हैं। तो वो भी ऐसा चाहता है ये सारे जीव मुझसे प्यार करें, ये उसकी फीलिंग्स है। इसीलिए उस प्रेम और वो प्यार हम सबके अंदर है पहले से, लेकिन अब वो डाइवर्ट हो चुका है। और उस प्यार को जो सोया हुआ है उसे जगाने के लिए कृष्ण गुरु को भेजते हैं, सतगुरु को भेजते हैं कि जाइए और इन सबके अंदर उस प्यार को फिर से जगाइए। तो एक उस दिन कृष्ण के पीछे माता यशोदा सोती लेकर पड़ गई और कृष्ण दौड़े आगे आगे, माता यशोदा पीछे पीछे, कृष्ण दौड़े आगे आगे, माता यशोदा पीछे पीछे, तुम आगे हम तुम्हारे पीछे, लसत कुंडलम गोकुलम ब्रजमान, वो जो ब्रज की गलियों में से आज कृष्ण दौड़ रहे हैं भयभीत होकर, और माँ यशोदा उनके पीछे उनको डराती हुई दौड़ रही है। अरे रे, ऐसा दृश्य कहाँ देखा कि जिससे काल भी डरता है, जिससे सूर्य भी डरता है, जिससे चंद्रमा भी डरता है, आज वो माता यशोदा से डर रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते एक अब कन्हैया को पूरी प्रैक्टिस से बंदरों को मस्ती करना किसने सिखाया? कृष्ण ने सिखाया। हमारे आचार्य कहते हैं कि सारे ब्रज में जो सबसे कम मस्ती करने वाला था वो बंदर था, और जो सबसे ज्यादा मस्ती करने वाला था वो कन्हैया। आप सोचिए, अब वृंदावन तो हम सब, तो कृष्ण बंदरों से सीखे थे चढ़ते कैसे, और कृष्ण एक पेड़ पर झट से चढ़कर ऊपर बैठ गए। माता यशोदा अब थोड़ी चिंता में हो गई कि अरे कन्हैया इस पेड़ पर चढ़े हैं, कहीं गिर जाए, कहीं बेचारे को लग जाए, अरे लो वो गिरेगा और उसे लग जाएगी। वाह 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 वाह, जिसने नरसिंह रूप लिया और हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला दहाड़ मारते हुए, इतो नरसिंहो भैर नरसिंहो नरसिंहाम मदे शरणाम मदे तव कर कमल वरे। ये अद्भुत रुद्र नरसिंह रूप लेकर वो आज ऐसे डर कर पेड़ पर बैठा है, और माता यशोदा सोची अरे बेचारा कहीं गिर न जाए। जिसने पकड़ कर रखा है सूर्य को, सूर्य हिलना मत, चंद्रमा हिलना मत, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों को पकड़ कर रखा है, उसकी चिंता हो रही है कि कहीं वो गिर न जाए। बेचारा शब्द, जब कोई कृष्ण को बेचारा कहता है ना, कृष्ण को अच्छा लगता होगा कि मुझे भी कोई बेचारा मानने वाला। माता यशोदा कहती है कन्हैया देख तू नीचे उतर जा, तुझे चोट लग जाएगी, सारे सखा जमा हो जाते हैं, बलराम जी भी आ जाते हैं। तो ताऊ जी कहते हैं कन्हैया मैया मैया एक काम कर, ये कन्हैया ना ऐसे ना उतरे को, कन्हैया को इसके सखान की कसम दो, इसके भक्तन की कसम दो। कहा कौन से भक्तन की? कहा सतयुग के भक्तों की, जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष बैठकर ध्यान किया, तपस्या की, हिमालय पर बैठे रहे, जटाएं बड़ी कर दी, योगी बन गए, ऋषि बन गए, मुनि बन गए, उन भक्तों की कसम दो। यशोदा ने कहा ताऊ जी आपने, ये बलराम जी ने तो बड़ी अच्छी आइडिया दिया। कहा वो कन्हैया तो ये तेरे भक्तन की कसम, नीचे उतर जा, कृष्ण ऊपर बैठ के ऐसे से कर ना मैया ना, मैं तो नहीं उतरू। दोनों एक दूसरे को देख रहे, माँ यशोदा कहे देख सखियों के भक्तों की कसम से भी ना उतरे। कहा एक काम करो, त्रेता युग सतयुग के भक्त कौन थे आपको पता है? सतयुग के भक्त राजा हरिश्चंद्र जैसे दिलीप सगर जैसे बड़े महान। अब त्रेतायुग पर बात आई, फिर तो हनुमान जी अंगद नील जामन ऐसे महान भगवत है का त्रेतायुग के भक्तों की कसम दो जरूर उतरेगा। कहा कन्हैया त्रेतायुग के भक्तों की कसम नीचे उतर जा। एक बार मैंने ना बोल दिया तो कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, नहीं उतरूंगा। फिर देखते हैं, एक काम करते हैं, द्वापर युग के भक्तों की कसम जो युग अभी भी चल रहा है जिसमें सुदामा श्रीदामा हम सब ये सखा ये अर्जुन ये गोपियां ये सब आ गए। अच्छा अच्छा कन्हैया तुझे तेरे द्वापर युग के भक्तों की कसम, अब तो नीचे उतर जा। नहीं अब भी नहीं, अब तो हिम्मत जैसे उन लोग हार ही गए। अब सोचा अब तो कलयुग बचा है, अब कलयुग में कौन से भक्त कहां के भक्त, अब भक्तों की क्या बात है कलयुग में, भक्त कोई कौन बन सकता। हाँ छोड़ दो, अब तो उम्मीद ही गई। तो ताऊ जी ने कहा नहीं एक बार देकर तो देखो, अब वही एक युग बचा है। अरे कन्हैया तो ये तेरे कलयुग के भक्तों की कसम, जैसे कृष्ण सुनते हैं मुझे कलयुग के भक्तों की कसम दी, चुपचाप पेड़ से नीचे उतरते हैं, मुंह लटका कर खड़े रहते हैं और अपनी पीठ मैया को दिखा देते हैं, मैया जितना मारना है मार। कलयुग के भक्त इतने प्यारे। कहा हाँ मैया, ये जो युग आएगा ना ये बहुत खतरनाक है, बड़ा भयंकर युग, यहाँ इंसान के लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा, कभी शरीर का रोग होगा कभी मन का रोग होगा कभी और कुछ नहीं, तो कोई इंसानी रोग बन जाएगा, बहुत कठिन बहुत परिश्रम वाला बहुत गधा मजूरी कराने वाला ये रोग होगा ये युग होगा। ऐसे युग में कोई मेरी थोड़ी सी भी अगर भक्ति करेगा, कोई थोड़ा सा भी मेरा नाम लेगा, कोई थोड़ा सा भी मुझे कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, तो उसके लिए मैं 2 लाठी खा लूं मुझे चलेगा, उसके लिए मुझे मंजूर है। आप सोचिए कृष्ण कितना प्यार करते कलयुग के भक्तों को। इसीलिए देवता भी भागवत में ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान यदि हमें पृथ्वी पर जन्म दिया मनुष्य रूप में देना, और मनुष्य रूप में भी कब देना, जब कलयुग चल रहा। क्यों भाई क्यों, कलयुग में जन्म क्यों चाहिए। अस्ति एको महान गुण, क्योंकि इसी कलयुग में एक महान गुण है, थोड़े से समय में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आयु छोटी है 50, 60, 70, जो 50 इयर्स के ऊपर जी रहे हैं वो समझना बोनस में जी रहे हैं। अगर आपकी एज 50+ है तो आप समझना आपके बोनस ग्रेस इयर्स चल रहे हैं। कभी भी फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है श्री राधे कही। आयु छोटी है लेकिन इसमें काम बहुत बड़ा हो सकता है। जो फल सत्युग में 12,000 वर्ष ध्यान करने से मिलता है वो यहां 12 घंटे कीर्तन करने से मिल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आइए आज के इस सत्संग को यहीं पर विराम दें।